इतना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है।
कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है।
माता पिता भाई बहनों का,
माता पिता भाई बहनों का सुंदर सा संसार।
इतना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है।
तो कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है।
परम पिता शिव भगवान और ब्रह्मा बाबा माली, स्नेह शांति सुख की फैली है हरियाली खुशहाली।
परम पिता शिव बागवान और ब्रह्मा बाबा माली, स्नेह शांति सुख की फैली है हरियाली खुशहाली।
रूहानी रौनक से गुलशन हो,
रूहानी रौनक से गुलशन ये तो गुलों गुलजार।
कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है।
बाबा सूरज मम्मा चंदा बच्चे ज्ञान सितारे, जग को रोशन करने वाले ये दो नयन हमारे।
बाबा सूरज मम्मा चंदा बच्चे ज्ञान सितारे, जग को रोशन करने वाले ये दो नयन हमारे।
हम उन पे बलिहार हुए हैं,
हम उन पे बलिहार हुए हैं, वो हम पे बलिहार। कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है।
कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है।
ओम शांति। तो आज से एक नई सीरीज आरंभ होने जा रही है, प्रभु परिवार। विश्व को परिवर्तन करने का बेहद का कार्य। बाबा कहते अगर भगवान चाहे तो चुटकी में कर सकता है, लेकिन हम बच्चों का इतना परम सौभाग्य है कि बाबा हमें अपना मददगार बनाते हैं। इस धारा पर अवतरित होकर सबसे पहले परिवार की रचना रचते हैं ब्रह्मा मुख के माध्यम से, ब्राह्मणों को रचते हैं, जो बाबा के 30 रुद्र ज्ञान यज्ञ में ब्राह्मण रक्षक हैं इसके। तो ये बेहद का परिवार है, प्रभु परिवार है, ब्राह्मण परिवार है। और ये परिवार इतना विशाल है जो पूरे संसार को परिवर्तन कर देता है। और इस परिवार की विशेषताएं अथाह विशेषताएं हैं जो संगठित रूप से गोवर्धन पर्वत की तरह अपनी विशेषताओं की उंगली से परिवर्तन के कार्य में तन मन धन पूरे मनोयोग से अपना सहयोग देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। तो इस सीरीज में हम देखेंगे इस ब्राह्मण परिवार में हमारी कैसी भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा समय मिला हमको सारे कल्प में अपना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बनाने के लिए। बाबा कहते तुम हो आधार मूर्त उद्धार मूर्त, इस सृष्टि के हीरो एक्टर हीरो हीरोइन, साधारण आत्मा नहीं हो, विशेष थे अति विशिष्ट आत्माएं हो। जो बाबा कहते जितने भी वीआईपी तो संसार में है, लेकिन तुम बच्चों जितने भी बीवी वीआईपी लगा लो कम पड़ेगा। तो भगवान की नज़रों में हम कितने ऊंचे हैं और हम अपनी नज़रों में कितना ऊंचा होना चाहिए। अगर उस स्मृति में स्थित रहें, उस शासन पर स्थित रहें, उस ऊंची स्थिति पर स्थित रहें, तो निश्चित तौर पर हम प्रभु प्यार का, प्रभु परिवार के प्यार का भी आनंद ले सकते हैं। परिवार बेहद है तो बातें भी बेहद की आती हैं। संसार में देखा जाए छोटा सा परिवार होता है। प्राचीन काल में तो परिवार बहुत अच्छे होते थे और अभी भी अच्छे ही हैं, लेकिन हम खुद खराब हो गए हैं इसलिए दूसरे हमको खराब दिखाई देते हैं। इसलिए बाबा कहते हमेशा विशेषताओं का चश्मा पहन कर रखो। तो हम देखेंगे इस परिवार में हमको क्या करना है, हमारे कौन से ऐसे कर्तव्य हैं। तो आज से नई सीरीज चालू हो रही है प्रभु परिवार, इस पार की ये बुक है। अव्यक्त मूल्यों से चयनित महावाक्यों के कुछ पैराग्राफ हैं जो 36 डे तक चलेंगे। तो रोज का एक पैराग्राफ होगा जिसको हम सारा दिन उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और उसका स्वरूप बनेंगे। क्योंकि अभी इस समय बहुत देख रहे हैं किस तरीके से बहुत तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है, तो जिस गति से समय परिवर्तन हो रहा है हमारी गति भी परिवर्तन की उतनी तीव्र होनी चाहिए। पुरानी चाल नहीं, दिन प्रतिदिन स्वयं को प्रकृति का अनुभव होना चाहिए कि कुछ तो परिवर्तन हो रहा है। तो ये इस सीरीज का पहला जो पाठ है, पहला पैराग्राफ है 17469 की अव्यक्तवाणी है, उसमें से लिया गया है। तो बाबा कह रहे बाप दादा से तो स्नेह है, लेकिन साथ साथ पुरुषार्थ से भी ज़्यादा स्नेह रखना चाहिए। केवल बाबा से प्यार उससे पर्याप्त नहीं है, पुरुषार्थ से भी स्नेह चाहिए, दैवी परिवार से स्नेह, सर्विस से स्नेह, बाप दादा से स्नेह ये तो हो है ही, लेकिन वर्तमान समय पुरुषार्थ से ज़्यादा स्नेह रखना चाहिए। जो पुरुषार्थ के स्नेही होंगे वो सबके स्नेही होंगे। पुरुषार्थ से हर एक का कितना स्नेह है वो हर एक को चेक करना है। बाप दादा से भी स्नेह इसलिए है कि वो पुरुषार्थ कराते हैं, बाबा करते नहीं है, कराते हैं पुरुषार्थ। प्रलब्ध से भी स्नेह तब होगा जब पहले पुरुषार्थ से स्नेह हुआ। दैवी परिवार का भी स्नेह तब तक ले अथवा दे नहीं सकते जब तक पुरुषार्थ से स्नेह नहीं। अगर पुरुषार्थ से स्नेह है तो वो एक दो के स्नेह के पात्र बन सकते हैं। स्नेह के कारण ही यहां इकट्ठे हुए हो, लेकिन बाप दादा के स्नेह में रहते हो। अब पुरुषार्थ से भी स्नेह रखना है, क्योंकि यही पुरुषार्थ ही तुम बच्चों की सारे कल्प की प्रारब्ध बनाता है। तो सारा सार क्या आ गया है, पुरुषार्थ से स्नेह होना चाहिए। बाबा से प्यार तो हम सब बच्चों का है ही है, उसी की बदौलत तो हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, लेकिन बाबा से स्नेह का परिणाम है पुरुषार्थ से प्यार, पुरुषार्थ से प्रेम, पुरुषार्थ से स्नेह। और पुरुषार्थ क्या चीज है, पुरुषार्थ एक प्राप्तियों की खान है। जैसे हम थोड़ा सा भी लौकिक संसार में भी अगर थोड़ी सी भी कोई मेहनत करता है और सफलता मिलती है तो कितनी खुशी होती है। तो यहां भी बाबा कहते हैं एक कदम तुम हिम्मत का रखो तो हजार कदम मदद देने के लिए मैं बंधा हुआ हूं। तो इस ब्राह्मण जीवन में प्रभु प्यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे पुरुषार्थ की स्पीड को बढ़ाता है। लेकिन उस प्लेटफार्म पर बहुत सारी सावधानी भी रखनी पड़ती है, क्योंकि बेहद का परिवार है, सबके स्वभाव संस्कार अपने अपने हैं। ऐसा नहीं जन्मते कोई दैवी गुणों की खान लेकर हम अवतरित हो गए। जन्म जन्म से हमारे कई ऐसे कठोर कुटिल संस्कार होंगे जो ब्राह्मण परिवार में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर देते हैं। अगर हमारी प्रगति नहीं होती है तो उसका एक मुख्य कारण है हम अपने संस्कारों को परिवर्तन करने का प्रयास कम करते हैं। अगर संस्कारों को परिवर्तन करने का प्रयास नहीं करते हैं तो फिर आपस में मनमुटाव होता है, टकराव होता है, दिल करता है भी अकेला अकेला रहे, दूर रहे। लेकिन ये भी माया की सूक्ष्म चाल होती है। संगठन से अगर थोड़ा से भी हम किनारे होंगे तो माया कब और कैसे ले जाएगी कोई पता नहीं चलेगा उसका। इसलिए बाबा कहते हैं बन बन की काठी है, जितना इसमें हम इन्वॉल्व होंगे बहुत सारी बातें हमको सीखने को मिलेंगी। संस्कारों का परिवर्तन स्वतः होता जाएगा, लेकिन सूक्ष्म अपने ऊपर अटेंशन रखने की जरूरत है। थोड़ा सा भी अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घट सकती है। तो ये प्रभु प्यार है, प्रभु परिवार है, तो ये किसका चयन किया हुआ है? स्वयं भगवान द्वारा चयनित परिवार है। उसने ऐसे वैसे को नहीं चयन किया है जो सर्वगुणों की खान है, जो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी वो आत्माएं हैं जो पूरी सृष्टि को चलाने वाली है, उनका चयन किया है। तो बाबा की दृष्टि में तो इतनी महान इतनी ऊंची आत्माएं हैं हम, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने ही विशेषताओं को, अपने ही गुणों को, जो हमारे अंदर आंतरिक इतनी ऊर्जा है, शक्ति है, उससे कहीं ना कहीं हम दूर रहते हैं, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते हैं। बहुत सारे ऐसी आत्मा के ऊपर परतें चढ़ी हुई हैं जिनको हटाने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने क्या कहा, पुरुषार्थ के स्नेही बनो। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करना है। न्यारा अर्थात अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। तो संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले तो अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ के स्नेही बाबा ने कहा, लंबे समय तक अगर हम अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करते रहेंगे उतना बाबा की समीपता का अनुभव होगा, समानता का अनुभव होगा, इस संसार से वैराग्य स्वतः आता जाएगा। केवल सोचने से नहीं आएगा कि मैं वैराग्य आत्मा हूँ, बाबा वैराग्य का सागर है। जैसे वो इस धरा पर आके कैसे सेकंड में चला जाता है, क्योंकि वो हमेशा बिना शरीर के रहता है। इस देह में आने से ही इस संसार के राग, इस संसार की इच्छाएं, आकर्षण, बहुत सारे ऐसे पुराने संस्कार खींचते हैं। जितना हम देह की स्मृति में रहते हैं, जितना हम अशरीरी रहते हैं उतना डिटैच रहते हैं, और शरीरधारियों के समान संपर्क में आते हुए भी कोई आकर्षण हमको बांध नहीं सकता है, क्योंकि सारा दिन तो हमको समान संपर्क में आना ही है। चलो दूसरों के समान संपर्क में कम आए, लेकिन 24 आवर हम अपनी देह के भी समान संपर्क में आते हैं। बाबा क्या कहते हैं, ये देह भी याद नहीं आए। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पुरुषार्थ है वो है अशरीरी बनने का पुरुषार्थ। जितना हम इस पुरुषार्थ में पारंगत होते जाएंगे, जितना हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा, उतना हम बाबा के नज़दीक, प्रभु परिवार के नज़दीक आते जाएंगे। कोई भी आकर्षित नहीं करेगा, बल्कि सभी आकर्षित होंगे हमारी तरफ नहीं, हमारे पुरुषार्थ को देख के बाबा की तरफ आकर्षित होंगे। क्योंकि जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, जिसके साथ हम टाइम बिता रहे हैं, जिसकी बातों को याद कर रहे हैं, उसके लक्षण हमारे में स्वतः आता जाएंगे और वो स्वतः फिर उसकी तरफ आकर्षित होंगे। तो लंबे समय तक हमको ये प्रैक्टिस करनी है अशरीरी बनने का पुरुषार्थ, दूसरा साइलेंस में रहने का पुरुषार्थ, क्योंकि आवाज़ में आकर बहुत सारी हमारी शक्तियाँ नष्ट हो जाती है। हाँ, ज्ञान की बातों की आवाज़ वो तो हमको एनर्जी देती है, लेकिन बहुत सारी अनावश्यक बातें इधर की उधर की, जैसे जैसे यज्ञ का विस्तार होता जा रहा है या संसार के समाचार, बहुत सारी ऐसी बातें जो हम अपने इस पात्र में भर के रख देते हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई सार नहीं है उनका, सारहीन बातें हैं जो एनर्जी को ख़त्म कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। तो जितना हो सके हम आवाज़ में कम आए, आवाज़ में कम आएंगे तो ही अशरीरी अवस्था हमको आकर्षित करेगी, खींचेगी। जन्म जन्म से हम आवाज़ में आते हैं, इसलिए बाबा कहते तुम हो वानप्रस्थी, वाणी से परे रहने का अभ्यास करना है। जितना हो सके उतना हम काम की बात बोले, शरीर से डिटैच हो जाए। अगर हम सारा दिन ज़्यादा वाचा में रहते हैं तो हमारा जो योग का समय होगा वो भी उन्हीं संकल्पों के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, उन्हीं संकल्पों में व्यतीत होगा। इसलिए जितना हो सके कम आवाज़, कम बोलना है। दूसरा, ब्राह्मण परिवार में आते हैं, जो संडे की मुरली में था कि ज्ञान तो सुना भी उसको स्वरूप में लाओ। बाबा ने बोल के लिए तीन बातें कही थी, मधुरता, सरलता और संतुष्टता। तो ब्राह्मण परिवार में, प्रभु परिवार में रहते हैं, ये तीनों बातें बहुत जरूरी हैं। किसी को भी अगर हम थोड़ा ऊंची आवाज से बोलेंगे, किसी को करेक्शन करने के लिए, जैसे बाबा ने उस दिन कहा था, शिक्षा देने का समय अभी गया, अभी क्षमा करने का समय है। तो ये वाचा में तीनों बातें होनी चाहिए, मधुरता, हम प्यार से बोले, क्योंकि जोर से बोल को तो देख लिया सब कोई, बदलते तो कोई है नहीं, कोई तो छोड़ो हम स्वयं काम बदलते हैं। सब क्या चाहते हैं, प्यार, सम्मान, स्नेह, मोहब्बत। तो हम मधुरता से बोलें, बोल में मिठास हो, सारयुक्त बोल हों, हिम्मत वाले हों, उमंग उत्साह वाले हों, प्रेम भरे हों, शक्तिवर्धक हों, तो मधुरता चाहिए। और सरलता, कोई भी हम बात किसी के सामने रखते हैं तो उसमें स्पष्टता और सरलता होनी चाहिए, घुमा फिरा के नहीं, जो है सीधा सीधा। नहीं तो आदत होती कहीं में घुमा फिरा के उसका सार अंत में कुछ हाथ में आता ही नहीं है। इसलिए इसमें सरलता भी चाहिए और संतुष्टता। इस परिवार में संतुष्ट रहना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि स्वास्थ्य संस्कार जब टकराते हैं तो हम सोचते हैं कि भगवान के बच्चे भी ऐसे हैं, उस फिर हम उंगली उठाते हैं उनके ऊपर। तो कहीं ना कहीं एक काल की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए हमको वो अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन बाबा तो त्रिकालदर्शी है, उसको तो आदि मध्यंत का सारा पता है, तो हमारे में वो संतुष्टता भी चाहिए। और दूसरा, परिवार में क्या चाहिए, समाने की शक्ति, सहन शक्ति, स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि सहन तो करना पड़ेगा ही। सहन किस लिए करना है, क्योंकि भगवान की आज्ञा है, इसलिए सहन करना है। और सहन किस लिए करना है, सहन शाह बनना है। और सहन किस लिए करना है, अपना परिवार है ये, हम पूर्वज हैं, चाहे ब्राह्मण परिवार है कोई भी है, लेकिन हम सृष्टि के पूर्वज हैं। तो घर में भी छोटे बच्चे होते हैं तो पूर्वज कैसे उनका सब कुछ सहन कर देते हैं, कोई बच्चा कंधे पर चढ़ रहा है, कोई बाल खींच रहा है, उनको उतना अच्छा लगता है, हाँ जी, बड़ों के कान पकड़ता है। तो इस ब्राह्मण परिवार में भी ऐसे ही होगा, तो ये भी हमारा अपना परिवार है, कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा, और अगर करेगा तो अभी तो करना, फिर बाद में थोड़ा नहीं करेंगे, यही तो थोड़ा सा समय मिला है। तो इस परिवार में हम सब हंसी खुशी से मिलकर रहें तो इन शक्तियों को ग्रहण करना बड़ा जरूरी है। अगर ये शक्तियाँ हमारे में हैं तो समय आने पर वो अपने आप स्वतः कार्य करेगी। अगर उन शक्तियों का अभाव है तो कोई थोड़ा सा भी कुछ बोलेगा तो सारी बात दिल में चुभ जाएगी। तो ऐसा हमको नरम दिल नहीं बनना है कि किसी की बात थोड़ी सी बात है और हम थोड़ा फाँ होके बैठ जाएं, पुरुषार्थ को छोड़ दें। बोलने वाले तो बोलेंगे और बोलना भी जरूरी है, नहीं तो हमें हमारी स्थिति का कैसे पता चलेगा, परिपक्व कैसे होंगे हम। वो तो बाबा कहते हैं संडे की मुरली में, अगर कोई गाली दे रहा है तो वो भी क्या है, उसको भी धन्यवाद को, क्योंकि हमको सहन शक्ति का पाठ पढ़ा रहा है वो। हाँ जी, हमको एक्टिव कर रहा है, जो हम निष्क्रिय हो चुके हैं सक्रिय कर रहा है थोड़ा। तो परिवार है, परिवार में तो हमको बहुत कुछ सीखना है, तो समय पर बहुत सारी शक्तियाँ काम में आए, सहन शक्ति, स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति, समाने की शक्ति, और बातों को समाना है, क्योंकि बहुत सारी बातें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी। जैसे कल भी बताया था, कोई भी मैसेज हमको फॉरवर्ड नहीं करना कहीं भी, नहीं तो सूक्ष्म पाप हमारे ऊपर चढ़ जाता है। हमारा काम है पुरुषार्थ, बाबा ने क्या कहा, पुरुषार्थ नहीं, कौन सा पुरुषार्थ करना है, जिससे दूसरों की उन्नति हो, जिससे आत्मा बंधनों से छूट सके, जिससे परिवार संगठित रूप से होकर आगे बढ़ सके, परिवार की उन्नति के लिए। आज की मुरली में महावाक्य है कि संगठित रूप से आप अपनी संपन्न स्थिति में स्थित रहेंगे तो विश्व परिवर्तन होगा। तो अगर हमारे मन में दूसरों के प्रति शुभ भावना है ही नहीं है, शुभ भावना का स्टॉक ही नहीं है, तो परिवर्तन कैसे होगा। तो सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, अपना परिवार है, जैसे शरीर का हिस्सा है, कितना प्यार है हमको इन उंगलियों से, इस शरीर से, ऐसे परिवार भी अपना है ये। लेकिन ये परिवार भी कैसा है, बेहद का परिवार है, संसार की तरह प्यार वाला वो नहीं है, रूहानी प्यार वाला परिवार है ये, और सारे कल्प में अभी मिलेगा ये। और किसने चयन किया, स्वयं भगवान ने चयन किया हुआ है, कितना ऊंचा परिवार है ये, एक एक में जो है विशेषताओं की खान है, तो हमको सबसे सीखना भी है। तो समय पर जैसे बाबा कहते हैं तुम होली हंसो, सबके गुण ग्रहण करो, अवगुण तो दिखाई देंगे लेकिन वो चित्त पर नहीं धरने हैं, अगर वो चित्त पर धर लिए तो फिर चित्त की प्रसन्नता खत्म हो जाएगी, जो कल था, दुआओं के विमान नहीं मिलेगा, फिर कौन सा विमान मिलेगा, बद्दुआओं का। पहले से हमारे मन में ऊपर बहुत सारे बोझ हैं, दूसरों के अवगुणों का बोझ भी अपने मन पर भर के रख ले तो कैसा लेगा। तो इस ब्राह्मण परिवार का हमको हमेशा सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखे, आगे बढ़ने का हमको पुरुषार्थ करना है, सीखना हर एक से, कैसा कोई, चाहे कोई छोटा बच्चा भी है, कोई भी है, सीखने की मानसिकता हमारी निरंतर बनी रहनी चाहिए। तो पुरुषार्थ स्नेही बनना है, केवल बाबा स्नेही नहीं, पुरुषार्थ स्नेही भी, परिवार स्नेही भी, और सर्विस की स्नेही भी, क्योंकि सर्विस भी एक ऐसी फील्ड है जो हमारी विशेषताओं को बाहर लाती है, निखारती है, उनमें ऊर्जा भरती है, उमंग उत्साह में लाती है। कितनी सारी हमको विधियां मिली हैं आगे बढ़ने की, प्रभु प्यार को एकता के सूत्र में बांधने की। आज हम दादियों को देखते हैं, इतना बड़ा संगठन यहां तक पहुंचा है, किसकी बदौलत, दादियों ने कभी किसी की कमी कमजोरी का वर्णन किया, तो हम भी उसी परिवार के भाती हैं, उसी परिवार के मेंबर हैं, तो हम कैसे करें फिर। बाबा ने कभी किया किसी कमजोरी का, बाबा ने कहा कि तुम्हारे में ये अवगुण है, तुम यहाँ नहीं आओ अभी, उस दिन था ना बोले रावण जैसा पक्का भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उससे सीखना है कुछ। तो हमारे संस्कार ऐसा ना हो कि हमारे संस्कार दूसरों के लिए बाधक बने, अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की साधना करनी है, और साधना कोई ऐसा नहीं कि कोई विशेष टाइम हमको बैठ के करनी है, ये तो सारा आंतरिक हमारी स्मृति के ऊपर निर्भर करता है, हमारी स्मृति कैसी है, कौन सी स्मृतियाँ हम मन में लेकर चल रहे हैं। जितनी शक्तिशाली स्मृति होगी उतनी हमारी शक्तिशाली स्थिति बनती जाएगी, परिस्थितियाँ तो प्रतिकूल आएंगी आएंगी, वो हमको पाठ पढ़ाने के लिए आएंगी आएंगी, लेकिन उनमें भी हम अपनी शक्तिशाली स्थिति बनाकर रखेंगे तो फिर हम परिवार को एकता के सूत्र में बांधने की भूमिका अदा कर सकते हैं। क्योंकि हम सबका कार्य क्या है, एकता से सारे संसार को परिवर्तन करना, परिवार को एकता के सूत्र में बांध के रखना। अगर कोई इस यज्ञ से जाता है, बाबा कहते हो किसकी कमजोरी है, अपनी कमजोरी समझो, कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, पता नहीं कौन से ऐसे सूक्ष्म बीज, कौन से कोने में अभी ऐसे शिपे पड़े हैं, वो पता नहीं कब अंकुरित हो जाएंगे, इसलिए लंबे समय की सूक्ष्म साधना चाहिए। किसी को देखने के बजाय स्वयं को देखना है, स्वयं को शुभ भावना शुभ कामना से इतना परिपूर्ण कर लेना है कि निरंतर सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना के प्रकंपन फैलते रहें। एक एक इंट का महत्व है, अगर किले से एक भी इंट निकल जाए तो क्या होगा, कमजोर पड़ जाएगा। तो हर एक ब्राह्मण यज्ञ की किले की एक एक ईंट है, उसका अपना अपना महत्व है। तो ऐसे हम महत्वपूर्ण इस संसार की आत्माएं हैं, प्रभु परिवार हैं। जैसे बाबा एग्जाम्पल भी देते हैं, आसमान में सूरज चंद्रमा सितारे परिवार की तरह, तो हम धरती के सितारे हैं परिवार की तरह हैं, चमकने वाले हैं, सबको चमकाने वाले हैं, ना कि किसी को गिराने वाले हैं, सबका उत्थान करने वाले हैं। तो ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं के माला बनानी है और उसके लिए योग के प्रयोग भी करने हैं। तो अभी हम 5-7 मिनट ड्रिल भी करेंगे, कमेंट्री करेंगे कि कैसे ब्राह्मण परिवार को संगठित रूप से रखना है, एकता के सूत्र में बांध के रखना है। तो अभी थोड़ा सभी अलर्ट होके बैठेंगे। ओम शांति। सभी सोमान की स्मृति में बैठेंगे। मैं इस ब्राह्मण परिवार की, प्रभु परिवार की सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं, स्वयं निराकार। शिव पिता ने ब्रह्मा मुख द्वारा मुझे ये दिव्य जन्म दिया है, मुझे वरदानों से भरपूर किया है। वरदाता का वरदानी हाथ निरंतर मेरे सिर पर रहता है। सभी अपना हाथ, दायां हाथ, राइट हैंड अपने सिर पर रखेंगे, महसूस करेंगे ये बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाप दादा के वरदानी हाथ से सर्व शक्तियों की ऊर्जा मुझ में समाती जा रही है और यही हाथ, यही मैं अपना हाथ सभी ब्राह्मण आत्माओं के सिर पर रख रहा हूं। संसार में जितने भी ब्राह्मण आत्माएं हैं सबके सिर पर वरदानी हाथ है। परमात्म शक्तियों की अनंत ऊर्जा का करंट उन आत्माओं में जा रहा है। नया उमंग, नया उत्साह, नए संकल्प के साथ आत्माएं जैसे नवीन ऊर्जा से भरती जा रही हैं, परमात्म शक्तियों से आत्मा फुल चार्ज होती जा रही है। संसार की सभी ब्राह्मण आत्माएं सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र पंछी की तरह आसमान में विचरण करते हुए अपने घर शांति धाम की ओर जा रही है। शांति धाम जहां चारों ओर शांति के शक्तिशाली वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन है। मैं आत्मा स्पष्ट रूप से मैं अनुभव कर रही हूं शांति धाम की सारी शांति जैसे मुझ आत्मा में प्रवेश करती जा रही है। वो गहरा साइलेंस, वो गहरा मौन, जैसे मैं स्वरूप बन गया हूं, वही स्थिति सर्व ब्राह्मण परिवार की बनती जा रही है। शांति का सागर शिव बाबा हर एक आत्मा से स्पर्श कर रहा है। उसकी सारी शक्तियां, वो शक्तिशाली वाइब्रेशन तीव्र गति से मुझ में प्रवेश करते जा रहे हैं। ये शांति धाम का परम सुख, परम शांति की अवस्था, ये मेरा मूल स्वभाव है। उसकी गहरी अनुभूति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। वो गहरा मौन, गहरा सन्नाटा, जैसे सारे का सारा मुझ में समा गया हुआ, सारे ब्राह्मण परिवार की आत्माएं शांति धाम में शिव बाबा के इर्द गिर्द बैठी हैं, शक्तिशाली चमकती हुई किरणों से नहा रही हैं, संपूर्ण पवित्र बन गई हैं। वो शांति धाम की, शांति के सागर की संपूर्ण पवित्रता जैसे मुझ में समा गई है। अब मैं आत्मा शांति धाम से धीरे धीरे इस धरा पर अवतरित हो रही हूं, आसमान में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए अपनी इस अमूल्य देह में प्रवेश कर रही हूं, स्वयं को स्पष्ट रूप से ब्रिटिश सिंहासन पर देह से बिल्कुल अलग महसूस कर रही हूं। ये देह भी जैसे लाइट का है, ये बरदानी हाथ बाप दादा के बरदानी हाथ से शक्तिशाली करंट निकलकर जैसे तन मन को संपूर्ण पवित्र बना रहा है, संपूर्ण शुद्धिकरण कर रहा है। अब ये तन मन परमात्म शक्तियों से भरा हुआ है, परमात्म प्यार से भरा हुआ है, विश्व कल्याण की भावना से भरा हुआ है, ब्राह्मण परिवार को एकता के सूत्र में बांधने के लिए भरा हुआ है, विश्व कल्याण के कर्तव्य के लिए मुझ आत्मा में अथाह ऊर्जा भर रही है। आज से नया जन्म, नया उमंग, नए उत्साह, नया पुरुषार्थ, नए संकल्प, नई ऊर्जा के साथ आज का दिन बहुत शक्तिशाली पुरुषार्थ के लिए मिला है। जो भी आज महावाक्य सुने उनका अनुसरण करने का स्वयं वरदाता ने वरदान दिया है, जिसे पूरा दिन अमल में लाना है। ओम शांति। तो ऐसे महावाक्यों को जीवन में आत्मसात करने के लिए भले हम थोड़ा पढ़े, लेकिन उसको स्वरूप मिलाने का पुरुषार्थ करना है। शक्ति स्वयं शक्तिशाली होंगे, शुभ भावनाओं से, शुभ कामनाओं से भरे होंगे, तो ब्राह्मण परिवार के प्रति भी हमारी वैसी भावनाएं होंगी। अगर स्वयं के प्रति हीन भावनाएं हैं, कमजोर संकल्प चलते हैं, तो हम वैसा ही वायुमंडल क्रिएट करते हैं और उसी वायुमंडल का प्रभाव हमारे आसपास आने वाली आत्माओं के ऊपर पड़ता है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप से हमारे ऊपर बाबा जैसे बहुत बड़ी जिम्मेवारी रखते हैं, लेकिन उस स्थिति पर हम स्थित होकर महावाक्य को सुनेंगे तो उस कार्य को करने के लिए हम सक्षम हो पाएंगे। नहीं तो जैसी चाल से चल रहे हैं वैसी चाल से चलते रहेंगे, और फिर वो उमंग, वो उत्साह, वो खुशी, ब्राह्मण परिवार माना ऊर्जा से भरा परिवार है सारा, ये एक एक आत्मा पर भगवान की नज़र पड़ी हुई है, तो साधारण आत्मा नहीं है। उसकी नज़र पड़ने से ही जैसे नया जन्म हुआ, पुनर्जन्म हो गया, जैसे उसकी नज़र पड़ने से जैसे सारी शक्तियाँ उसने हमको बिल कर दी हुई हैं, लेकिन हम विस्मृत हो जाते हैं कि क्या क्या मिला। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा प्राप्तियों की लिस्ट को सामने रखो, क्या क्या मिला हमको, और उसको नए नए तरीके से देखना, एक एक तरीके से नहीं, उसके नए नए एक पुरुषार्थ एक व्यंजन की तरह है। जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं, नई चीज़ खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट होती है, कितना मज़ा आता है, तो पुरुषार्थ भी एक व्यंजन की तरह, उसको नए नए चीज़ें तरीके से तैयार करके उसको स्वीकार करना है। बाबा कहते मैं ज्ञान का गर्म गर्म हलवा बनाता हूँ, तो हम भी रोज़ हलवा बनाए वो अलग अलग तरीके से। अब हलवा बनाना होता तो सारी चीज़ें सामने होंगी तभी बना पाएंगे, अगर खाली कढ़ाई है, सूजी है नहीं है, घी है नहीं, तो बनाएंगे कैसे। तो खाली हम योग में बैठ गए और ज्ञान बुद्धि में है ही नहीं, तो हलवा बनेगा कैसे। वो कढ़ाई गर्म होकर सड़ जाएगी, तो बुद्धि रूपी कढ़ाई में उस वैसी चीज़ें भी डालनी है, कौन सा घी डालना है, शक्तियों का घी डालो, किशमिश डालो, काजू डालो गुणों के, उसको हिलाते रहो, देखो क्या क्या मिला अंदर में, बुद्धि में क्या क्या भर के रखा हुआ है। तो नए नए तरीके से पुरुषार्थ एक व्यंजन की तरह स्वीकार करना है। पिकनिक में जाते कितना मजा आता है, तो पुरुषार्थ भी क्या वास्तव में ब्राह्मण जीवन की पिकनिक है ये। अगर हम अच्छे अच्छे भोजन खाते भी हैं, इस पेट को भर लेते हैं, उतनी खुशी नहीं होगी जितना खुशी पुरुषार्थ करने से होगी। इसलिए बाबा ने क्या कहा, पुरुषार्थ के स्नेही बनो। तो बाप दादा से तो स्नेह है, लेकिन साथ साथ पुरुषार्थ से भी ज्यादा स्नेह रखना चाहिए। दैवी परिवार से स्नेह, सर्विस से स्नेह, बाप दादा से स्नेह, ये तो है ही, लेकिन वर्तमान समय पुरुषार्थ से ज्यादा स्नेह रखना चाहिए। और समय कितना हमारे पास, कोई भरोसा नहीं कब श्वास अटक जाएगी। जो पुरुषार्थ के स्नेही होंगे वो सबके स्नेही होंगे। पुरुषार्थ से हरे का कितना स्नेह है वो हरे को चेक करना है। तो व्यक्तिगत रूप से स्वयं की जांच करनी है कि सचमुच हमारा पुरुषार्थ से स्नेह है। अगर नहीं है तो क्या कारण है, कहाँ हमारी बुद्धि अभी भी अटकी हुई है, कौन से साधनों ने हमारी बुद्धि को बांध के रखा हुआ अभी, जिनको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो पुरुषार्थ से हरेक का कितना स्नेह है वो हरेक को चेक करना है। बाप दादे से भी स्नेह इसलिए कि वो पुरुषार्थ कराते हैं, और बाबा कितने नए नए तरीके से पुरुषार्थ कराते हैं। प्रहलाद से भी स्नेह तब होगा जब पहले पुरुषार्थ से स्नेह होगा, नहीं तो वो स्वर्ग के नाम सुनते खुशी होगी नहीं वो, क्योंकि पहले पुरुषार्थ ही नहीं वैसा स्वर्ग में जाने वाला, तो स्वर्ग का नाम सुनते खुशी कैसे होगी। वैसे हाँ ऊपर में आएगा कि हम स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन वो लक्षण तो अभी दिखने चाहिए ना, वो स्वभाव संस्कार तो अभी होने चाहिए। तो प्रहलाद से भी स्नेह तब होगा जब पहले पुरुषार्थ से स्नेह होगा। इसलिए प्रहलाद से श्रेष्ठ क्या है, पुरुषार्थ श्रेष्ठ है। प्रलब तो परिणाम है, और वो उसमें इतना सुख नहीं है प्रलब में जितना पुरुषार्थ में सुख है। वो प्रलब से भी स्नेह तब होगा जब पहले पुरुषार्थ से स्नेह होगा। दैवी परिवार का भी स्नेह तब तक ले अथवा दे नहीं सकते जब तक पुरुषार्थ से स्नेह नहीं। अगर पुरुषार्थ से स्नेह है तो वो एक दो के स्नेह के पात्र बन सकते हैं। हम पुरुषार्थ करते नहीं तो हमारे प्रति दृष्टिकोण में सबका कैसा रहेगा, सीधी सी बात है। अगर पुरुषार्थ करते हैं तो सबकी मनोभावनाएं भी हमारे प्रति ऊंच कोटि की हो जाएंगी, अपने आप ही हमारे कई बंधन ऐसे खलास हो जाएंगे। अगर पुरुषार्थ से स्नेह है तो वो एक दो के स्नेह के पात्र बन सकते हैं, स्नेह के कारण ही यहां इकट्ठे हुए। लेकिन बाप दादा के स्नेह में रहते हो इसलिए अब पुरुषार्थ से भी स्नेह रखना है, क्योंकि यही पुरुषार्थ ही तुम बच्चों की सारे कल्प की प्रारब्ध बनाता है। तो सारे कल्प की प्रारब्ध और संगम की प्रारब्ध देखनी है। संगम की प्रारब्ध क्या है, सबसे बड़ी खुशी, चित्त की प्रसन्नता, कल जो बाबा ने कहा संतुष्टता। तपस्या की सिद्धि क्या है, संतुष्टता का फल। अगर इस ब्राह्मण लाइफ में संतुष्टता नहीं है, हाँ पुरुषार्थ से संतुष्ट नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन फिर भी जो हम एक जो बाबा कह रहे पुरुषार्थ से स्नेह है या वो वाली संतुष्टता, जैसे बहुत सारे व्यर्थ को हम छोड़ रहे हैं, उससे जो सेटिस्फैक्शन मन को मिलेगी, वो जो अतेंद्रिय सुख की अनुभूति होगी, वो संगम योगी प्रलब्ध की खुशी अपनी है, उसका कोई पारावार नहीं है। तो ऐसे ये प्रभु परिवार का आज पहला चैप्टर था, ये हमने देखा। अब ये चैप्टर आगे चलते रहेंगे तो हम इसका स्वरूप बनने का पूरा पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।
युगों के जन्म जन्म के भक्ति का फल पाए हैं, भाग्य बड़े भगवान हमारे घर बैठे वो आए हैं।
जन्म जन्म के भक्ति का फल पाए हैं, भाग्य बड़े भगवान हमारे घर बैठे वो आए हैं।
ऐसी किस्मत सबकी जागे,
ऐसी किस्मत सबकी जागे, गाते मन के तार। कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है।
ओ कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है। माता पिता भाई बहनों का, माता पिता भाई बहनों का सुंदर सा संसार, कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है। कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है। कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है।